आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच डॉक्टर प्रेम मसंत पधारे हैं। इससे पहले कि मैं इनके बारे में आपको बताऊं, आज से कई साल पहले जब मैं पहली बार यहां आया था तो मैंने इनका एक सेशन बाय डिफॉल्ट अटेंड किया और मैं डॉक्टर साहब से भी कह रहा था, उनसे मिलने का मौका मुझे सिर्फ आज मिला और वो सेशन मेरे जहन में ऐसा बैठा हुआ है कि आज तक नहीं निकल पाया। मैंने सर से पूछा कि सर वो आज थोड़ा सा रिपीट कर दीजिएगा तो शायद फिर से हमको पुरानी यादें आ जाएंगी। डॉक्टर साहब बहुत ही लर्नेड व्यक्ति हैं और उनके साथ जो हमारी बहन बैठी हैं वो हैं मनीषा बहन, वो फिजियोथेरेपिस्ट हैं और वो ग्लोबल हॉस्पिटल में यहाँ पे काम कर रही हैं। डॉक्टर साहब जो हैं वो MD रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। अगर आप लोगों को न जानकारी हो तो कैंसर से रिलेटेड ट्रीटमेंट के लिए, और डॉक्टर साहब ने 1979 में मेडिकल कॉलेज इंदौर से पढ़ाई की थी और उसके बाद 1981 टू 1990 तक जॉर्ज टाउन हॉस्पिटल गयाना में रहे। उसके बाद कैंसर हॉस्पिटल इंदौर में 91 से लेकर 93 तक सर थे, उसके बाद 94 से लेकर 96 तक अकोला में कैंसर हॉस्पिटल में मेडिकल सुपरिटेंडेंट रहे। 97 से 2006 तक जो ग्लोबल हॉस्पिटल है यहाँ पे, और यहाँ पे ग्लोबल हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर है उसमें है और उसमें कंसल्टेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट रहे। 2007 से 2008 ट्रॉमा सेंटर एंड आई हॉस्पिटल है आबू रोड में, जहाँ पे आप मेडिकल सुपरिटेंडेंट रहे, और 2009 से हमारे साथ एसोसिएटेड है सिक्योरिटी सर्विसेज विंग में। हमारे साथ तो बहुत से सेशन उन्होंने किए हैं लेकिन जैसा मैंने कहा मेरी पर्सनल बातचीत आज पहली बार उनसे हो पाई। इसके अलावा सर कॉरपोरेट सेक्टर में बहुत सी कंपनीज के साथ एसोसिएटेड हैं, TCS, विप्रो, LNT, GNFC, केशोराम सीमेंट्स, अद्रानी पोर्ट ट्रस्ट, नवीनो, हिंदुस्तान मोटर्स, ICRI, SAT, BSNL, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, BHEL, LIC, एटसेट्रा एटसेट्रा। गवर्नमेंट सेक्टर में आप RBI, SBI, नाबार्ड, यशोदा इंस्टीट्यूट, DIPS, इसरो, इंडियन रेलवेज, TPS, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, CWC, कैट इंदौर, BSNL, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड एंड BHEL, LIC। इसके अलावा बहुत सारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ सर एसोसिएटेड हैं। छोड़ दो सर, इनको बच्चों को तो पता चलना चाहिए सर। PGI चंडीगढ़, सर बोल रहे हैं थोड़ा जल्दी कर लो, तो मैं PGI चंडीगढ़, IIT रुड़की, IIM कैलिकट, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत लंबी लिस्ट है और सर का सेशन जो है इतना इंटरेस्टिंग होगा कि मैं नहीं चाहता कि बीच में इंटरव्यू हो। सर बहुत सी बुक्स भी लिखते हैं और बहुत से टॉपिक्स पे बातचीत करते हैं। अब आज का टॉपिक आप खुद देखिएगा, मैं सिर्फ एक चीज बता सकता हूं आपको कि उनका जो कन्वे करने का तरीका है इतना मनोरंजक है, इतना अनूठा है, इतना अनोखा है कि आप सबको बहुत ही अच्छा लगेगा। सर मे आई रिक्वेस्ट यू टू, थैंक यू।
थैंक यू। ओम शांति। आप सभी का स्वागत है। आप लोग अच्छा सुबह का सेशन भी सुना होगा, आज मॉर्निंग का भी। जो टॉपिक है इमोशनल स्टेबिलिटी, ये हम सब के जीवन में कहीं ना कहीं अप्लाई होता है और जीवन के हर एरिया में अप्लाई होता है, चाहे जॉब पर होता है, चाहे घर पर होता है, चाहे रोड पर होता है, किसी भी जगह पर इसका यूज आता ही आता है। इससे पहले मैं शुरू करूं, पहले थोड़ा हम अपने को फिजिकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली चार्ज करेंगे। खड़े हो जाएं। हमारे मेरे साथ मनीषा बहन है, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, और आप सभी जानते हैं कि आज के समय में सबसे ज्यादा डिमांड फिजियोथेरेपिस्ट की आ गई है, हर एरिया में, स्पोर्ट्स में, फिजिकल लाइफ में। हर व्यक्ति को जीवन में कभी न कभी फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो आइए हम शुरू करते हैं। वेरी गुड। टॉपिक है इमोशनल स्टेबिलिटी, भावनात्मक संतुलन, बैलेंस। एक बहुत अच्छी स्टोरी याद आ रही है। एक फ्लाइट में कई लोग बैठे हुए हैं, प्रीस्ट बैठा है, लोग बैठे हैं, और एक 10 साल की बच्ची भी बैठी हुई है। बीच फ्लाइट में प्रॉब्लम आता, स्टॉर्म आता, अनाउंसमेंट होता, सब लोग बेल्ट बांधकर बैठे, नाश्ता नहीं मिलेगा जब तक स्टॉर्म पूरा हो जाए। आगे चलती है फ्लाइट, फिर अनाउंसमेंट होता है तूफान तेजी से है, लंच भी शायद हम दे नहीं पाए। सब लोग डरते हैं, घबराते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, थोड़ा कई लोग पैनिक हो रहे हैं, पर वो बच्ची 10 साल वाली बिल्कुल शांत बैठी हुई है, काम एंड क्वाइट बैठी हुई है, बुक पढ़ रही है, रख रही है। फ्लाइट लैंड होती है, वो प्रीस्ट उसके पास जाता है, लैंड होने के बाद बाहर निकलते हैं, हरेक को डर लग रहा था फ्लाइट में, पर मैंने देखा आपको बिल्कुल डर नहीं लग रहा था, आप बहुत शांति से बैठी थी। उस बच्ची ने कहा मेरे पिताजी ही पायलट थे और वही फ्लाइट चला रहे थे, प्लेन चला रहे थे, इसलिए मेरे को कॉन्फिडेंस था कि कुछ नहीं होगा, परमात्मा हमारे साथ है और वो भी हमें कॉन्फिडेंस देता है। फ्लाइट में कोई भी प्रॉब्लम आए, लाइफ में प्रॉब्लम आए और आएंगे, पर मैं तुम्हारी सेफ लैंडिंग करा दूंगा अगर मेरा फेथ निश्चय अच्छा है। तो इमोशनल स्टेबिलिटी का अर्थ ही है कि हम अपना बैलेंस मन बुद्धि, लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन राइट साइड ऑफ द ब्रेन दोनों का बैलेंस बनाकर रखें। इसीलिए हम इंडिया में नमस्ते करते हैं। क्यों नमस्ते करते हैं? मैं जब नमस्ते कर रहा हूं तो मैं कह रहा हूं मैं दिल और दिमाग से आपके साथ हूं, दिमाग और दिल से आपके साथ हूं। जब हम एक हाथ मिलाते हैं तो मैसेज ये जाता है मैं 50% आपके साथ हूं। इसीलिए इंडिया का नमस्ते पूरे वर्ल्ड में गया। हाथ उठाएं और कहें आई एम द बेस्ट, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम ब्यूटीफुल। तो इमोशनल स्टेबिलिटी का अर्थ है हमारे जो इमोशन है, भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, उसको ठीक करना। ऐसा देखा गया है जनरली जो हमारा थिंकिंग ब्रेन है, सोचने वाला ब्रेन है, और हमारा जो इमोशनल ब्रेन है, फीलिंग वाला ब्रेन है, दोनों एक साथ काम करते हैं। जो हम देखते हैं, सुनते हैं, फील करते हैं, वो खबर पहले हमारे इमोशनल ब्रेन, लोअर ब्रेन में जाती है, वहां से वो प्रोसेस होकर हायर ब्रेन में, थिंकिंग ब्रेन में जाती है, और फिर वहां से मैसेज आता है और हम डिसीशन लेते हैं, निर्णय लेते हैं। पर आज के समय में ये देखा जा रहा है कि ये पलट गया गेम। नॉर्मली हमारे थॉट्स, संकल्प, विचार हमारे इमोशन को कंट्रोल करते हैं, ये नॉर्मल है क्योंकि थिंकिंग ब्रेन बॉस है, वो बॉस है, जो बॉस कहेगा वही फॉलो होता है। पर आज के समय में ये पलट गया है, हमारी फीलिंग, हमारे इमोशन हमारे थॉट्स को कंट्रोल कर रहे हैं और हमें कंट्रोल कर रहे हैं। इसीलिए टीवी पर कई तरह की खबरें आती है, समाचार आते हैं, पार्किंग का आया, ओवरटेकिंग का आया, छोटी सी बात पे झगड़ा हुआ और मारा। क्यों हुआ? क्योंकि जो हमारी फीलिंग है, इमोशन है, जल्दी खुलते हैं और हम वो नुकसान कर देते हैं जो नहीं करना चाहिए था। टीवी पर भी देखते हैं कई लोग बोल देते हैं, बाद में कहते हैं मैंने ऐसा नहीं बोला था, सॉरी। ये घटनाएं कॉमन होती जा रही है क्योंकि टेक्निकली हम लोग टेक्नोलॉजी का ज्यादा यूज कर रहे हैं। अगर मैं मोबाइल का ज्यादा यूज कर रहा हूं, कंप्यूटर्स का ज्यादा यूज कर रहा हूं, मेरा नेचर जल्दीबाजी करने का, इम्पल्सिव है, तो वो लोअर ब्रेन जल्दी खुलेगा, इमोशनल ब्रेन जल्दी खुलेगा। इसलिए हमें जरूरी है दोनों का बैलेंस ठीक रखें, दोनों जरूरी हैं, थिंकिंग ब्रेन भी जरूरी है, इमोशनल ब्रेन भी जरूरी है। पर कोरोना के बाद हम देख रहे हैं हार्ट अटैक बहुत कॉमन होते जा रहे हैं, यंग एज में भी हार्ट अटैक हो रहे हैं। फिजिकली वो पर्सन फिट है, कोलेस्ट्रॉल फिट है, शुगर ठीक है, बीपी ठीक है, मेडिकली फिट है, फिर भी हार्ट अटैक हो रहे हैं। देखा सिंगिंग कर रहा था, गाना गा रहा था और बाहर गया तो हार्ट अटैक हुआ। 26-25 साल वाले को भी हार्ट अटैक कॉमन होते जा रहे हैं। और दूसरा प्रॉब्लम बहनों में, फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 हो गया है। मैं जब पढ़ता था ब्रेस्ट कैंसर बहुत पीछे था, सर्वाइकल कैंसर नंबर 1 था। अब देखा जा रहा है ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 ऑल ओवर द वर्ल्ड हो गया, इंडिया में ये टॉप हो गया। उसका कारण है कि जो हार्मोन्स चलते हैं बॉडी में, अच्छे हार्मोन, डोपामीन है, सेरोटोनिन है, ऑक्सीटोसिन है, ये गुड हार्मोन है, खुशी वाले हार्मोन है, ये इसका बैलेंस खत्म हो जाता है। जब कभी भी इमोशनल स्ट्रेस होता है तो बीमारी आती है। बीमारी का मुख्य कारण आज 90% अगर कहूं तो भावनात्मक तनाव है, इमोशनल स्ट्रेस है। हम खुद उस बीमारी के जिम्मेवार हैं। अगर वो हम कम कर दें तो काफी बीमारी हम कम कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूं, अगर तंबाकू खाना बंद कर दें तो 30-40% कैंसर खत्म ही हो जाए। 30-40% कैंसर का कारण टोबैको है। अब नया एडिक्शन जो आ गया है, तंबाकू सब जानते हैं खराब है, डेंजरस है। अब नया एडिक्शन आ गया है मोबाइल का, व्हाट्सएप का, इसीलिए गर्दन ज्यादा टाइट हो रही है, इसीलिए मनीषा बहन का भी काम बढ़ गया है। जब कभी भी हम झुके ही रहते हैं, कभी कभी तो मैं देखता हूं नीचे भी लोग आते हैं, ऐसे गुम हो जाते हैं, टकरा भी जाते हैं। अब आगे आने वाले समय में एक जॉब बहुत अच्छा हो जाएगा, जो लोग बेचारे देखने के आदि हो गए, एडिक्टेड हो गए, उनको सपोर्ट करने के लिए, चलाने के लिए कोई व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी, हेल्प पड़ेगी, क्योंकि वो खोए हुए हैं। फायदा ये हुआ कि हल्ला नहीं मचा रहे हैं, खुद में खो गए हैं, और वाईफाई फ्री कर दें तो सब चुपचाप होकर देखते रहते हैं। तो इसीलिए लोअर ब्रेन ज्यादा काम कर रहा है। तो इमोशनल स्टेबिलिटी लाना है तो हमें थोड़ा टाइम अपने को देना पड़ेगा। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्पेस, खुद को खुद स्पेस दो। रोज आधा घंटा कम से कम अपनी जगह बनाओ अपने अंदर। ये मेरी स्पेस है, जॉब कर रहा हूं, ड्यूटी कर रहा हूं, घर में हूं, सब अच्छा है, पर ये आधा घंटा मेरा खुद का है, उसमें मैंने सब बंद कर दिया। मैं मोबाइल के बिना भी रह सकता हूं, रख दिया। वो आधे घंटे में खुद को देखो और खुद को सोचो, मेरे में क्या कमी है, वीकनेस है, और मेरी क्या ताकत है। अपनी ताकत को बाहर निकालो, वीकनेस को ठीक करो। इमोशनल स्टेबिलिटी का अर्थ ही है इमोशन, इमोशन का अर्थ है इमोशन, इसका अर्थ है इमोशन का, हमारा हर इमोशन फीलिंग एनर्जी लेता है, हर इमोशन में ताकत है, एनर्जी है, चाहे वो गुस्सा कर रहा है, डिप्रेशन में है, एनर्जी है, खुशी है, एनर्जी है, पर हमें उसका बैलेंस बनाना है। मुझे याद आ रहा है कई साल पहले एक फुटबॉल टीम वाला प्लेयर, उसने गोल किया और वो इतना खुश हुआ गोल करके कि पलटी मारी जमीन पर, 2-3 डैमेज हुआ स्पाइनल कार्ड और उसकी डेथ हो गई। T20 के मैचेस में कई बार देखता हूं आखिरी ओवर में 2 सिक्सर मारनी है, 3 सिक्सर मारनी है, लोग चिपक जाते हैं, और सिक्सर लगी या न लगी लोगों को हार्ट अटैक आते ही आते हैं हर T20 के मैच के बाद। क्यों हुआ? जो हमारे अंदर से ब्रेन से एक नस चलती है, नव चलती है, लिख लो, वो कहलाती है वेगस नव। वो नव बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ब्रेन से चलकर हार्ट को सप्लाई करती है, आंतों को सप्लाई करती है करंट। अगर वो नस ओवर एक्टिव हो जाए तो हार्ट अटैक होता है, जिसको हम लोग कहते हैं शॉक। उसका सडन ओवर एक्शन हुआ और वो खून की धमनी कंस्ट्रिक्ट हो गई, दब गई और हार्ट अटैक हुआ। ब्लड प्रेशर ठीक था, कोलेस्ट्रॉल ठीक था, सब ठीक था, बॉस ने कुछ कह दिया, छुट्टी रिजेक्ट हुई, प्रमोशन नहीं हुआ, इतनी फीलिंग में चले गए, अंदर ही अंदर रख लिया उसको, रख लिया रख लिया रख लिया, डिप्रेशन शुरू हुआ। इसलिए आज दुनिया में डिप्रेशन कॉमन होता जा रहा है। हार्ट अटैक, कैंसर, टाइप 2 डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक के बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम अब वर्ल्ड में आ गया है डिप्रेशन का, ज्यादा सोचने का, ओवर थिंकिंग। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ सीक्रेट सीखने पड़ेंगे। कोई कुछ ना कहे ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ऐसा होए कितना अच्छा होए, कोई मुझे कुछ नहीं कहे, टच मी नॉट, जैसे आजकल की पर्सनालिटी क्या हो गई है, टच मी नॉट, मेरे को बोलना कुछ नहीं। पर ऑर्गेनाइजेशन में जब हम काम करते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, यहां भी कोई कुछ तो बोलेगा ही बोलेगा। अब उसको मैं पकड़कर यहां रख दूं, एक साल तक रख दूं, तो क्या होगा, वो मेरी ही बीमारी लाएगा। उसको क्या करना पड़ेगा, हर रात को चेक करो और निकालो, हर रात को चेक करो कौन सी बात आज अच्छी नहीं लगी और क्यों नहीं लगी, उसको निकाल दो, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लेट गो। लेट गो का अर्थ है जाने दो। दूसरा वर्ड एक बड़ा अच्छा लगता है, मैं अप्लाई करता हूं, इग्नोर। कोई चीज अच्छी नहीं लगी तो मैं इग्नोर करूं, उसको जाने दूं। और जो कह रहा है, अगर आपको कह रहा है आप सुन लो, पर इतना सीरियस ना हो जाओ कि हार्ट अटैक आ जाए। एक बड़े ऑथर ने कहा, कल ही मैंने पढ़ा, बहुत अच्छा, पहले कहता था फिर याद आया, लाइफ इज कॉमेडी फॉर दोज हु थिंक। लाइफ कॉमेडी है जो सोचते हैं, लाइफ इज ए ट्रेजेडी फॉर दोज हु फील। जो फील करते हैं प्रॉब्लम आता है। इंग्लिश के दो वर्ड हैं, इफ यू माइंड इट मैटर। अगर किसी चीज को हम माइंड कर रहे हैं तो क्या होगा, बॉडी भी माइंड करती है। हमारे यहां किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड लगा, इधर दोनों, जैसे ही माइंड किया, मैंने रिएक्ट किया, वो क्या करेगा, स्ट्रेस हार्मोन छोड़ेगा बॉडी में, और स्ट्रेस हार्मोन बॉडी में ज्यादा छूटेगा तो क्या होगा, डैमेज करेगा। फिर दूसरा सेंटेंस है, इफ यू डोंट माइंड इट डजंट मैटर। आपने माइंड ही नहीं किया तो बॉडी की भी कहेगी मैं ठीक हूं, ये मेरा सॉफ्टवेयर है। लिख लो, सॉफ्टवेयर मेरा क्या है, TEAM, थॉट्स, टी ई इमोशन, ए एटीट्यूड, एम मेमोरी। थॉट्स, इमोशन, एटीट्यूड, मेमोरी, ये मेरा सॉफ्टवेयर यहां पड़ा हुआ है। संकल्प, भावनाएं, फीलिंग्स, मेरा देखने का तरीका और मेरे अंदर जो गया हुआ है बचपन से डाटा, हर एक के अंदर बचपन से डाटा गया हुआ है, पड़ा हुआ है। एक बच्चे के अंदर 7 साल तक, एक माँ के पेट से 7 साल तक 3 लाख प्रोग्राम चले जाते हैं और वही प्रोग्राम उसके चलते रहते हैं। उसको कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड, वो उसको गवर्न करते हैं। अगर मैंने गुस्सा देखा तो गुस्सा गया, डर देखा तो डर गया, तो ये सब प्रोग्राम वहां चलते रहते हैं क्योंकि वो 90% रहते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, अपने नेगेटिव प्रोग्राम्स को क्या करना है, छोड़ना है। खड़े हो जाए, आई लव यू जिंदगी। हाँ,
उसे कह दो हाय 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 हाय, जो दिल ना लगे उसे कह दो बाय 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 बाय। आने दो दिल में आ जाने दो, कह दो मुस्कुराहट को हाय 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 हाय। जाने दो दिल से चले जाने दो, कह दो घबराहट को।
सीक्रेट ये है कि कब मुझे बोलना है कब नहीं बोलना है, कब एंट्री मारनी है कब नहीं मारनी है, कभी कुछ करना है कभी नहीं करना। टीवी पर एक बहुत अच्छा एड दिखाते हैं, शायद किसी चॉकलेट का है। लड़का चॉकलेट खा रहा है, एक ओल्ड लेडी चेयर पर बैठी है, बेंच पर, उसकी छड़ी गिर जाती है। वो बच्चे को कहती है छड़ी उठाकर दे दे, वो बोलता है यस, पर उठाता नहीं है। दो तीन बार बोलती है पर उठाता नहीं है, तो वो खुद ही उठ जाती है छड़ी उठाने। जैसे ही छड़ी उठाने जाती है, ऊपर से छत गिरती है, वहां गिरती है, वो बच जाती है। वो बच्चे को कहती है थैंक यू वेरी मच, अगर तू उठा देता तो मैं था ही नहीं। अब उसका मैसेज क्या है, मैं उसको क्रिटिकली एनालिसिस कर रहा था कि लाइफ में कभी कभी वो समय रहता है जब हमें शांत रहना पड़ता है। कोई गुस्सा कर रहा है मेरे ऊपर, अब उस समय अगर मैं भी गुस्सा करके उसको जवाब दूंगा तो नुकसान मेरे को भी होगा, मेरी एसिडिटी बढ़ेगी, बीपी बढ़ेगा, हार्ट अटैक होगा, उसका तो हो ही रहा है। तो उस समय मैं साइलेंटली चुप हो जाऊं। जब कभी भी कोई कुछ कहता है नेगेटिव, हमें उस समय सोचना चाहिए कि ये सोल का, आत्मा का पार्ट ऐसा ही है। हम सब एक्टर हैं, अपनी अपनी एक्टिंग कर रहे हैं। मेरी एक्टिंग मेरे को अच्छी करना है, मेरे को उसके इफेक्ट में नहीं आ जाना है। अगर मैं भी गुस्सा करूं तो यानी मैं उसके दबाव में आ गया। उस समय शांत रहूं, रिएक्ट नहीं करूं, रिस्पॉन्ड करूं। सुंदर पिचाई गूगल का जो सीईओ है, उसने बहुत अच्छा एक स्पीच में कई साल पहले बताया था, बहुत फेमस हुई थी, मेरे को भी बड़ी अच्छी लगी। वो एक रेस्टोरेंट में कॉफी पी रहे हैं, सामने लेडीज बैठी हैं, कॉफी पी रही हैं। एक कॉकरोच आकर एक लेडी के ऊपर आ जाता है, वो चिल्लाने लगती है, पैनिक हो जाती है। बड़ी मुश्किल से वो कॉकरोच को हटाती है तो दूसरी लेडी के ऊपर आ जाता है, वो भी चिल्लाने लगती है। धीरे धीरे तीन चार के ऊपर आ गया, तीनों चिल्ला रही हैं। जो वेटर था वो देख रहा था, वो आया हेल्प करने के लिए। कॉकरोच अल्टीमेटली उसके ऊपर चला गया, वेटर के ऊपर। वेटर ने देखा, ऑब्जर्व किया, ठीक है, और पकड़ के उसको रेस्टोरेंट के बाहर फेंक दिया। सुंदर पिचाई सोच रहा था कॉकरोच रिस्पॉन्सिबल है रिएक्शन का, कि वो लोग खुद ही हैंडल नहीं कर पाए सिचुएशन को। आप बताओ कौन रिस्पॉन्सिबल है? कौन? हर एक व्यक्ति, कॉकरोच भी नहीं। मेरा क्वेश्चन है कॉकरोच रिस्पॉन्सिबल है कि वो खुद लेडीज रिस्पॉन्सिबल है? कॉकरोच होता तो वेटर भी चिल्लाता, वेटर शांत रहा, उसने देखा। तो कॉकरोच रिस्पॉन्सिबल नहीं था, वो लेडीज कैसे रिएक्ट कर रही थी वो रिस्पॉन्सिबल था। तो उसने यही कहा, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए कभी रिएक्ट नहीं करो, रिस्पॉन्ड करो। ये वर्ड अभी पॉपुलर हो गया है, बहुत कंपनीज में सिखाया जाता है। रिस्पॉन्ड करो, एक्ट करो, रिएक्ट नहीं करो। जहां रिएक्ट करेंगे हमारी बॉडी भी रिएक्ट करेगी, ये बना हुआ है। सॉफ्टवेयर टू हार्डवेयर, हमारा शरीर हार्डवेयर है। यहां जो भी हो रहा है उसका कारण मेरा सॉफ्टवेयर है। डर यहां आ रहा है, दर्द यहां आ रहा है। बच्चे कहते हैं ना, कल स्कूल नहीं जाऊंगा क्योंकि होमवर्क नहीं किया है, तो कहता पेट में दर्द हो रहा है। डर यहां, दर्द यहां, क्योंकि हमारी आंतें सेकंड ब्रेन है, लिख लो। ये रिसर्च स्टडी है एक बहुत बड़ी फिजियोलॉजिस्ट की, उसने 250 पेपर, उसकी बुक ही है मॉलिक्यूल्स ऑफ इमोशन, उसमें उसने बताया कि जो इस ब्रेन में होता है वो आंतों में होता है, इसलिए आंतों के प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होते हैं क्लिनिक पर, एसिडिटी, अल्सर, ये वो, ये यहां जो हो रहा है वो यहां हो रहा है। तो यहां जो होता है उसका रिएक्शन पेप्टाइड्स यहां निकलते हैं, तो हमें क्या करना है, रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पोंड करना है। ऊपर वाले हॉल में, हार्मोनी हॉल में, मुझे याद है कई साल पहले डॉक्टर कर्नल चोपड़ा, डॉक्टर दीपक चोपड़ा के फादर, जो कि वर्ल्ड फेमस अमेरिका के एक ऑथर हैं, कई होलिस्टिक हीलर हैं, एमडी हैं, उनके फादर आए थे। डॉक्टर दीपक चोपड़ा भी एक बार आए थे। लेक्चर के बीच में एक ने पूछा ऑडियंस से, सर मेरे को अल्सर है, मेरे को क्या खाना चाहिए? तो डॉक्टर कर्नल चोपड़ा ने कहा, ये जरूरी नहीं कि आप क्या खाना खा रहे हो, पर ये जरूरी है कि आपको क्या खा रहा है। जब कोई चीज हमें खाती है अंदर ही अंदर, तो कैंसर, अल्सर, एसिडिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब कभी भी हम इमोशंस को दबा देते हैं, फीलिंग को सप्रेस करते हैं, हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। इसीलिए क्या करना है, हमें अपने इमोशंस को, फीलिंग को शेयर करना है, किसी के साथ भी शेयर करो। बॉस अच्छा है तो उसको बताओ, अब वो भी थोड़ा वो है तो किसी दोस्त को बताओ, वाइफ को बताओ, हस्बैंड को बताओ, किसी को तो बताओ, और कोई नहीं है तो पेड़ को बताओ, आकाश को बताओ, खुद को बताओ। फिर से हाथ ऊपर करें, कहें आई लव यू सो मच, आई लव यू, बहुत अच्छे हो, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम ब्यूटिफुल, बहुत अच्छा हूं। आइए मनीषा, नहीं वो आपको कराएंगे, बहुत अच्छी चीज है। चलिए खड़े हो जाएं थोड़ा। ह्यूमर, अब मैं इसका सीक्रेट बताता हूं। ह्यूमर फिजियोलॉजी है, सीरियसनेस पैथोलॉजी है। नॉर्मन कजिन एक वर्ल्ड फेमस ऑथर थे, अमेरिका के, रशिया गए, उनको स्ट्रेस हुआ, उनको बीमारी आई एंकाइलोसिंग स्पॉन्डोलाइटिस, जिसमें डॉक्टर ने कहा हम कुछ नहीं कर सकते ये प्रॉब्लम को, आप कुछ भी करो। वो अपने कमरे में गए होटल के, और लॉरेन हार्डी, चार्ली चैपलिन की मूवीज देखने लगे, और रोज 45 मिनट हंसते थे। उनकी बीमारी 2 महीने में ठीक हो गई। लॉफिंग इज ए इंटरनल जॉगिंग, जब हम हंसते हैं तो हमारे अंदर हार्मोन, हैप्पी हार्मोन निकलते हैं। ये अब सीक्रेट आ गया, और वो हैप्पी हार्मोन हमें ठीक करते हैं। चलिए
अभी आपको दो दो की आपको जोड़ी बना लेनी है, आमने सामने दो दो की बना लीजिए,
दो दो की पेयर। हाँ, एक दूसरे हाँ, को देखें,
एक दूसरे को फेस करते हुए।
हाँ, देखिए देखिए,
अभी हाथ जोड़ना है आपको सामने,
कभी नहीं देखा है तो आप देख लो।
और हंसना है, खिलखिला के हंसना है आपको एक दूसरे को देखते हुए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अभी
अभी
अभी एक दूसरे को उंगली दिखाते हुए आपको
अभी कहते हैं ना हम लोग, देख लूंगा तेरे को, तो आप देख लेना,
पर हंसते हंसते
हंसते हुए देखना।
वेरी गुड, अभी सामने आ जाएंगे, सामने घूमेंगे। अभी मैं विद क्लैपिंग हम एक्सरसाइज करेंगे लाफिंग की। मैं बोलूंगी हा हा, आपको क्लैपिंग के साथ बोलना है हो हो, ठीक है? हा हा,
हो हो,
हा हा,
हो हो,
हा हा,
हो हो,
हा हा, वेरी गुड। अभी थोड़ी डीप ब्रीथ लेंगे, और थोड़ा
सांस लेना,
गहरी सांस लेंगे थोड़ी, और अभी हमको लाउड लाफ करना है, हाथों को ऊपर ले जाते हुए अच्छे से दिल खोल के हंसना है।
मैं देख रहा हूँ कौन अच्छी तरह हंसेगा। मैं रिपोर्टिंग करूंगा।
फेक इट अंटिल यू मेक इट। जब तक के नकली को भी हम असली हंसी में हम कन्वर्ट कर देंगे। तो चलिए, ओ वेरी गुड। फिर से एक बार और, लास्ट और एकदम अच्छे से, साथ में एक बार। वेरी गुड, वेरी गुड।
अच्छा बुलाना है।
हाँ जी, जी अभी बैठेंगे। अभी बैठेंगे सभी अपने स्थान पर। वैसे सभी ने कॉपी पेन तो रखा ही होगा अपने पास में। तो
इस एक्सरसाइज में आपको जो इंस्ट्रक्शन मिलेंगे एक दूसरे को बताना है।
अभी कुछ देर अपनी आंखें बंद करेंगे और अपने अंदर झांकना है आपको, और कुछ क्वेश्चंस मैं कुछ बताऊंगी, वो आपको अपनी लाइफ में आपको उसको देखना है बैक जाके कि कब ऐसा एक्शन आपने किया था। तो सभी अपनी आंखें बंद करेंगे, गहरी सांस, रिलैक्स। अभी आप अपनी लाइफ का वो पल याद करेंगे जब आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हुआ था, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हुआ था, और उसका ट्रिगर पॉइंट क्या था, मीन्स किस कारण की वजह से वो आपको इतना ज्यादा स्ट्रेस हुआ था।
लिखें आप उसका आंसर, या एक दूसरे को बताएं। लिखना नहीं है तो वो था, एक दूसरे को बताएं और सोल्यूशन दूसरा वाला बताएं।
अभी शेयर करेंगे एक दूसरे से,
दो एक दूसरे को देखें। और अपना कारण बताएं और सोल्यूशन ये बताएंगे, फिर ये कारण बताएंगे, आप सोल्यूशन
एक्सचेंज, एक अपनी प्रॉब्लम का
सोल्यूशन
जी।
तो लिख शेयर सकते करना, हाँ, शेयर करो। हाँ बताओ, वेरी गुड वेरी गुड, सो गुड। आप इधर आ जाओ, आपको कोई नहीं तो इधर बताओ। इनको बताओ ट्रिगर पॉइंट बताओ आप। समस्या है तो समाधान भी है, कारण है तो निवारण भी है। क्या होता है, हम उस समय घबरा जाते हैं तो हमारी बुद्धि इंटेलेक्ट काम नहीं करती, ब्लॉक हो जाती है, और उसके कारण हम कुछ भी कर देते हैं। तो कभी भी ऐसा न करें, लोग सुसाइड एक सेकंड के प्रॉब्लम के कारण कर देते हैं। अगर वो एक सेकंड उसका टल जाता तो सुसाइड भी टल जाता। इसीलिए कभी भी किसी भी कारण से, कोई भी कुछ भी कारण है, एक्सट्रीम कारण है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है और सुसाइड नहीं करना है। परमात्मा ने हमें जो जिंदगी दी है हमें पूरी तरह से जीना है। एक छोटा कारण हमारी जिंदगी को न ले, खुशी से उसको ठीक करना। हाँ करिए। अब जिसने कर लिया है तो थोड़ा एक एक व्यक्ति इधर आके बताए, ये पॉइंट था मेरा जिंदगी का स्ट्रेस का कारण। एक दो आके बताएं। हाँ आप लोग खुलोगे तो और अच्छा होगा, ओपन अप हो। अभी कोई यहाँ वो नहीं हो रहा आपका, आराम से बैठे हो, रिलैक्स होकर बताइए, खुलिए, ओपन अप होइए, ओपन अप। वेरी गुड, सर के लिए ताली बजाएं, वेरी गुड। सामने तो आप, इनके सामने।
ओके, कोरोना पीरियड में ऐसा हुआ कि मेरा लड़का बेंगलोर में पढ़ रहा है और भाई मेरा पुणे में रहता है। तो उस समय ज्यादा अपना मोमेंट बंद था, बसेस वगैरह या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना है तो भी आपको परमिशन या पासेस लेने पड़ते थे ऑनलाइन। तो बच्चे ने जब मेरा वहां पे एजुकेशन बंद हो गया क्लासेस, तो उनको इंस्ट्रक्शन मिली कि आप अपने घर पे चले जाइए। तो मुझे बताया कि मैं तो ओके हूं। मैंने फेद पे उसको बोला ठीक है आ जाओ, और जब पूना में भाई के घर पहुंचा तो मुझे कॉल करके बोलता है मैं पॉजिटिव हूं। उस समय मैं काफी स्ट्रेस में आ गया कि एक बच्चे के कारण, अभी मेरा भाई है, उसकी बीबी, उसका भी एक बच्चा है, तो पूरा परिवार आस पड़ोस के जो भी इसका रेसिडेंशियल एरिया है उसमें काफी इसका असर पड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो रात काफी स्ट्रेस में गुजरी मेरी, जो कि हमेशा याद रहती है। उस दिन फिर सुबह उसको पूरे रात में सोचता रहा क्या होगा, क्या हो पाएगा। दवाई तो उसने ले ली थी। सुबह अर्ली मॉर्निंग फोन करके जब मैंने उसको पूछा ऐसे क्यों किया, तो बोला मैं डर रहा था। डरना क्या है, एक बार बता, अगर तू आज ये चीज मुझे बता दिया होता तो मैं, हो सकता तेरा रुकने का बंदोबस्त कहीं आइसोलेशन में करता, आइसोलेटेड एरिया में, हॉटेल एरिया में हो जाता। तो एक ऐसा एक्सपीरियंस रहा जब सुबह बताया कि मेरा फीवर कम हो गया है और मैं अभी आउट ऑफ डेंजर हूं, तो ये मेरे लाइफ का सबसे स्ट्रेसफुल रात रही है।
वेरी गुड, थैंक यू। तो आपने देखा, कारण कुछ भी हो, आपके फील्ड में काफी कारण होते हैं, पोस्टिंग है, बॉस है, छुट्टियां है, परिवार है, काफी रीजंस रहते हैं। पर उन रीजंस के बीच में रहते हुए, क्योंकि हमें वहीं जॉब करना है, ड्यूटी करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको हम अच्छी तरह हैंडल करें, पॉजिटिवली हैंडल करें, और जहां मैं कुछ कर सकता हूं उसको जरूर करिए, और जहां कुछ नहीं कर सकते उसको थोड़ा टाइम शांत होकर छोड़ो। तो यूनिवर्स जो है हमें मदद करता है, हमारे जो संकल्प हैं, थॉट्स हैं, हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। पूरा खेल जो हमारे साथ चलता है वो हमारे थॉट्स का है, संकल्पों का है। इसीलिए लॉर्ड गौतम बुद्धा से पूछा किसी ने कि सबसे बड़ा शत्रु आदमी का कौन है, तो लॉर्ड गौतम बुद्धा ने कहा था उसका अपना नेगेटिव थॉट है। तो कभी भी नेगेटिव थॉट आए और एक को हमने घुसने दे दिया तो 1000 थॉट्स और आ जाते हैं, फिर थिंकिंग चालू हो जाती है और डिप्रेशन आता है। उसी समय उसको स्टॉप करो, जैसे ही आए उसको देखो, ऑब्जर्व करो, जो कॉकरोच का बताया, आया, देखा, ऑब्जर्वेशन, और फिर क्या कर सकता हूं उसने किया। तो हर सिचुएशन में कहीं ना कहीं साइलेंस हमें आंसर देता है, जिसको कहते हैं इंट्यूजन, गट फीलिंग, कि उस समय 1 मिनट में अगर शांत हो जाता हूं, साइलेंट होता हूं, जैसे कहते थे पहले भी कि जब गुस्सा आए तो 10 तक गिनती गिनो, उल्टी गिनती गिनो, 10, 9, तो क्या होता है, जैसे ही हम गिनती शुरू करते हैं हमारा थिंकिंग ब्रेन, सोचने वाला ब्रेन काम शुरू कर देता। अभी तक इमोशनल ब्रेन काम कर रहा था, पर जैसे ही मैंने सोचना शुरू किया तो वो कम होता। तो इमोशन हमारे ऊपर हावी ना हो, जरूरी है। बच्चे ने कुछ अच्छा किया, गले लगाया, उसको वाइफ ने अच्छा किया, उसको अप्रिशिएट किया, हमेशा खुद को अप्रिशिएट करो और दूसरों को भी अप्रिशिएट करो। हर एक की भूख क्या है, हर ह्यूमन नेचर की भूख क्या है, अप्रिशिएट करे कोई मेरे को, और अप्रिशिएट करते हैं हम अपनी सेल्फ वर्थ को तो हम ठीक होते हैं, हीलिंग होता है शरीर में, 1/3 हीलिंग अपने आप होता है अगर हम उससे डिटैच होकर अपने को अप्रिशिएट करते हैं। इसीलिए जो हमारी खुद से खुद की टॉक है, बातचीत है, वो पॉजिटिव होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए, दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आई एम हेल्दी, आई एम पावरफुल, आई एम पीसफुल, आई एम लवफुल। दिन में 3-4 बार खुद से खुद बात करो कि मैं ठीक हूं, इस समय मैं यहां पर हूं, सब ठीक है। तो धीरे धीरे जो प्रॉब्लम की इंटेंसिटी रहती है वो कम हो जाती है, पर जब कभी भी हम रिएक्ट करते हैं तो हमारा ब्लड सप्लाई कमजोर हो जाता है। डर आता है तो हमारा ब्लड कहां जाता है, दोनों पांव में आ जाता है, फियर में जैसे बताया ब्लड यहां आ जाएगा, और मेरे को ब्लड कहां चाहिए, आंतों में चाहिए या ब्रेन में चाहिए। तो डर यानी क्या, FEAR, ज्यादातर डर फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल, फियर का मतलब ऑनरेबल अब्दुल कलाम जी ने कहा था, FEAR, फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। ज्यादातर डर रियल नहीं है, 99% डर रियल नहीं है, 1% रियल है, पर हम क्या करते हैं वो 99 को अंदर डाल देते हैं। तो फियर आए तो उसका अर्थ है FEAR का पॉजिटिव मीनिंग है, फेस एवरीथिंग इन राइस, डर का सामना करो और खड़े हो जाओ। अंधेरी रात में पोस्टिंग है, लोनली जगह है, कोई नहीं है, वहां पोस्टिंग है, धीरे धीरे दोस्ती कर ली। एक का मुझे याद आ रहा, काफी अच्छा था उसका, रातों से दोस्ती कर ली, तारों से दोस्ती कर ली, आकाश से दोस्ती कर ली, तो उसका जो अकेलापन था दूर हो गया। क्या करा, अच्छा चलो 2 मिनट, अब हम एक पॉजिटिव मेडिटेशन करेंगे। सीधे बैठ जाए,
अपनी आंखें बंद कर सकते हैं सभी, रिलैक्स हो जाएंगे सभी। गहरी सांस, और ये अनुभव करेंगे कि आपकी जो चेतना है वो पूरे शरीर के पैरों से होते हुए धीरे 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 ऊपर की ओर आती जा रही है, पैरों से, काफ से, घुटने, पेट, हाथ, शोल्डर, गर्दन, फेस। ऊर्जा अब मस्तक के बीच में, एनर्जी एकाग्र अपने मन और बुद्धि से अनुभव करें कि मैं एक मस्तक पर चमकता हुआ एक दिव्य सितारा हूं, एनर्जी हूं। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, मेरा मन बिल्कुल शांत हो गया है, शांति मेरा स्वधर्म है, शांति मेरा निजी गुण है। इस शांति की शक्ति से मैं हर परिस्थिति में स्थित रह सकता हूं, मैं, मेरा मन बिल्कुल शांत, मेरा शरीर भी बिल्कुल शांत और रिलैक्स हो गया है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं और शांति मेरे गले का हार है। जब भी कोई ऐसी स्ट्रेस की सिचुएशन आए तो अपने इसी स्वरूप को पुनः स्मृति में लाएं कि मैं शांत स्वरूप हूं। अब कुछ क्षण इसी शांति की अवस्था में बैठेंगे।
करेंगे कि मस्तक से पुनः चेतना आपके मस्तिष्क, चेहरे से गर्दन, कंधों में, हाथों में, पेट, बैक, लोअर लिम्स में पुनः चेतना फैल रही है, एनर्जी फैल रही है, एक एक मसल्स रिलैक्स हो गया है, मन शांत हो गया है। पुनः अपने इस चेतना में वापस आए, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। ओम शांति शांति शांति।
तो जब कभी भी लगे मेरा मूड ऊपर नीचे हो रहा है, आएगा, स्विंग होते हैं मूड, उस समय अपने को कहें आई एम पीसफुल, अपने अंदर ही अंदर बोलें, उसको रिफ्लेक्ट नहीं करें, आई एम लवफुल। सबसे पावरफुल वर्ड है खुद को खुद से प्यार करना। इंग्लिश का शब्द है FLY, फ्लाई। फ्लाई का अर्थ क्या हुआ? फर्स्ट लव योर सेल्फ। रोज जब हम अपने को प्यार करते हैं, अपनी एप्रिसिएशन को बढ़ाते हैं, सेल्फ वर्थ को बढ़ाते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं लगता। सेल्फ वर्थ यानी मेरी जो वैल्यू है, मैं यहां पर क्यों आया हूं, किस लिए आया हूं, पृथ्वी पर क्यों जन्म हुआ, तो अपनी वर्थ बढ़ाएंगे। और जिसका सेल्फ स्टीम अच्छा रहता है, सेल्फ वर्थ अच्छा रहता है, उसको प्रॉब्लम कम आते हैं और उसकी हेल्थ अच्छी रहती है। डॉक्टर मैक्सवेल ने, प्लास्टिक सर्जन था वो, लड़कियों की सर्जरी करता था, यंग गर्ल्स की जो 17-18 साल की रहती थी, जिनका फेस में प्रॉब्लम आ जाता था, तो उनकी सर्जरी करता था। उसने देखा 100 में से 90 गर्ल्स ठीक हो जाती थी, सर्जरी के बाद कहती थी आई एम गुड, आई एम ब्यूटीफुल, पर 10 लड़कियां फिर भी कहती थी आई एम अगली। फिर डॉक्टर मैक्सवेल ने स्टडी की कि क्यों हो रहा है ऐसा, जबकि उनका फेस तो ठीक हो गया, पर जो उनकी प्रोग्रामिंग हो गई थी आई एम अगली, तो वो चलती रहती है। इसीलिए टीम का अर्थ, एक का अर्थ है अपने को एटीट्यूड, जिस तरीके से मैं अपने को देख रहा हूं उसको अच्छी तरह देखो। हाँ बोले, मैं जो हूं जैसा हूं बहुत अच्छा हूं, आई एम ओके, बहुत अच्छा हूं, बहुत गुड हो। तो खुद की वर्थ को बढ़ाइए, खुद को अप्रिशिएट करिए, कोई आपको करे या ना करे। आजकल क्या हो गया, लोग भाग रहे हैं, सब भाग रहे हैं, किसी को किसी के लिए टाइम ही नहीं है, तो क्या करें, खुद को खुद करें, खुद को खुद करें। मैं तो कर सकता हूं ना अपने को, फिर से उठाएं, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम ब्यूटीफुल। इमोशनल स्टेबिलिटी एक डॉक्टर ने स्टार्ट की थी, 3-4 डॉक्टर्स की टीम थी अमेरिका में, और उन्होंने कई किताबें भी लिखी थी, डॉक्टर डैनियल गोलमैन, डॉक्टर मेयर। उन्होंने एक बहुत अच्छी एक्सपेरिमेंट किया, एक स्कूल में गए, 4-5 साल के बच्चे बैठे थे, उनको एक स्वीट दिया, वो अमेरिकन स्वीट था, मैं उसको कन्वर्ट करके कहता हूं चॉकलेट दिया। उनको बोला चॉकलेट यहां पड़ा है, हम 15 मिनट बाद आएंगे, अगर आपने चॉकलेट नहीं खाया तो दूसरा चॉकलेट मिलेगा, अगर खा लिया तो नहीं मिलेगा, वो कहकर चले गए। अब ज्यादातर बच्चों ने देखा चॉकलेट पड़ा है, चॉकलेट पड़ा है, खा लो, तो ज्यादातर बच्चों ने खा लिया। अब जब वो आए डॉक्टर, उन्होंने देखा कुछ बच्चों ने नहीं खाया, उनको सेकंड तो मिला ही। फिर इन्होंने 40 साल तक उनकी स्टडी करी कि इन बच्चों का क्या हुआ जिन्होंने नहीं खाया था, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिले ग्रेटिफिकेशन, यानी उन्होंने अपनी कंट्रोल को अच्छा रखा, सेल्फ कंट्रोल अच्छा रखा, मास्टरी करी, वो लाइफ में हर जगह सक्सेसफुल हुए, पढ़ाई में अच्छे गए, सक्सेसफुल हुए, अच्छे बने, उनको बीमारियां कम आई, क्योंकि उन्होंने अपने कंट्रोल को अपने हाथ में रखा। इमोशनल स्टेबिलिटी का अर्थ ही है कि मेरा अपने ऊपर कंट्रोल अच्छा हो, अपने संकल्पों पर कंट्रोल हो, अपने इमोशन पर कंट्रोल हो। मैं मास्टर हूं, आई एम द मास्टर, मैं क्रिएटर हूं, तो जब मैं उनको कंट्रोल ठीक रखूंगा तो मैं जहां चाहूं उनको यूज कर सकता हूं। हमारे संकल्प, हमारे थॉट्स एनर्जी क्रिएट करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम ठीक करना है तो शांत होकर बैठो और वो प्रॉब्लम को छोड़ो और सॉल्यूशन फेंको, आप देखेंगे कहीं ना कहीं से सॉल्यूशन आपके पास आ जाएगा। थॉट्स में इतनी पावर है, थॉट्स अट्रैक्ट करते हैं। हमारा हर विचार जो बाहर जा रहा है, एनर्जी लेकर जा रहा है, पूरे वर्ल्ड में जा रहा है और कहीं ना कहीं से वापस आ रहा है। मेरे को याद है एक लेडी ने मेरे को कहा, मेरे को सुसाइड के थॉट्स बहुत आते हैं, जैसे ही एक संकल्प आता है सुसाइड कर लूं तो 1000 विचार और आ जाते हैं, कर ले। कहां से आए? जो फेंका वो वापस आए। हमारे साथ जो हो रहा है अभी, उसका कारण मेरे अपने संकल्प 6 महीने पहले, 1 साल पहले, 6 साल पहले जो सोच रहा था वो अब हो रहा है। कल ही मैंने पढ़ा नीट एग्जाम में, एक बच्ची पंजाब की एक गांव में, उसने नीट क्लियर किया, MBBS डॉक्टर बनने गई। उससे पूछा गया, उसके फादर मदर भी बैठे थे, बचपन से ही उसको ड्रीम था कि मेरे को डॉक्टर बनना ही है, और वो बन गई। जो इमेजिनेशन उसने किया, ड्रीम किया, वो थॉट्स घूमते गए और वो बन गई। तो हमारे जो थॉट्स रहते हैं, जो हम इमेजिनेशन करते हैं, वो पावरफुल होता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि जो हम हैं वो एनर्जी है, वाइब्रेशन है, एंड इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन एनीथिंग। जो चीज आपको क्रिएट करना है, पहले अपने माइंड में उसको इमेजिन करो। स्ट्रेटजीज आप लोग डेवलप करते हो, पहले यहां डेवलप करो और फिर उसको अप्लाई करो, तो वो होगा ही होगा। मैं लास्ट स्टोरी एक देता हूं, रियल स्टोरी है, मेरी फेवरेट स्टोरी है, डॉक्टर रियल वर्शन है। डॉक्टर मार्क एक कैंसर के सर्जन है, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है। एक फ्लाइट में जा रहे हैं, फ्लाइट में प्रॉब्लम आया, फ्लाइट लैंड की गई। वो एक मीटिंग अटेंड करने, कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहे थे, उनको अवार्ड मिलना था। फ्लाइट लैंड हुई, बाहर आए, एयरपोर्ट पे पूछा मुझे वहां जाना है कितना टाइम लगेगा, बोला 4 घंटे बाय रोड जाना पड़ेगा। उन्होंने कार हायर की और रोड कार चलाना शुरू किया। बीच रस्ते पर फिर आंधी तूफान आया, कार ने रास्ता खोया और एक जगह पहुंच गए जहां कुछ लाइट दिखी थी। अंदर गए, घर में एक लेडी थी, लेडी ने उनको अंदर बुलाया। लेडी को पता नहीं कि ये कौन है, वो आकर बैठ गए। लेडी ने उनको चाय का कप दिया, चाय पीते पीते डॉक्टर मार्क ने देखा वो लेडी कुछ प्रार्थना कर रही है और एक बच्चा लेटा हुआ है। प्रार्थना पूरी होने के बाद डॉक्टर मार्क ने पूछा आप क्या कर रहे थे? लेडी ने कहा मेरे बच्चे को एक ऐसा रेयर कैंसर है जिसका ट्रीटमेंट केवल डॉक्टर मार्क कर सकते हैं, मैं भगवान को प्रार्थना कर रही हूं डॉक्टर मार्क यहां आ जाए, और वो वहां पहुंच गए। पावर ऑफ थॉट्स, फेथ, होप, ये 3 पावरफुल वर्ड हैं, कभी नहीं छोड़ना। कोई भी फेल्यूअर आए घबराना नहीं, फेल्यूअर के बाद कहीं ना कहीं फिर बिगिनिंग होती ही होती है। फेल का अर्थ ही है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, FAIL, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। गिरे हैं फिर उठ जाओ, गिरे हैं फिर उठ जाओ। मैंने जितने भी UPSC एग्जाम के रिजल्ट देखे, IAS टू IPS देखा एक बच्ची को, कैसे वो सब नेगेटिव था फिर भी देती गई और पास कर लिया। तो कभी भी हिम्मत नहीं हारना है। चलिए खड़े हो जाए, मुस्कुरा जाओ।
शायद अब मेरे शब्दों की जरूरत नहीं है आपको, आपने महसूस कर लिया है कि डॉक्टर साहब अपने विचारों को कितने साधारण शब्दों में आप तक पहुंचा देते हैं। इट वॉज अ वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक विच ही पिक्ड अप एंड उसको इतना सिंप्लीफाई कर दिया कि आपको लगता है ये तो कुछ है ही नहीं। बहुत सी बातें उन्होंने बताई, अब मैं रिपीट नहीं करूंगा, पर आप उसमें से अगर एक एक पॉइंट भी अपने साथ ले जाएंगे तो वो आपके जीवन में आपको बहुत मदद करेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो डॉक्टर साहब ने बताया था, आपने पता नहीं गौर किया कि नहीं, इंटीमेट कन्वर्सेशन विद योरसेल्फ। हम सारा जीवन दूसरों के लिए समय बिताते हैं, अपने साथ बातचीत करो, और जब अपने साथ बातचीत करेंगे तो आप अपने अंदर चले जाएंगे। आज डॉक्टर साहब आपको अपने अंदर ले गए थोड़ी देर के लिए, आपने महसूस ही नहीं किया, पता ही नहीं चला। वी आर एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू यू सर एंड मनीषा बहन, शी हैज द सेम इम्पैक्ट, शी इज पिकिंग अप वेरी फास्ट सर। तो दोनों के लिए हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। प्लीज गिव देम अ क्लैपिंग। थैंक यू वेरी मच सर, वेरी काइंड ऑफ यू सर।
है तो कोई क्वेश्चन, एक कोई अटक गया हो तो पूछ सकते हैं, दो तीन मिनट है। हाँ, कहीं लग रहा है, आगे आ जाओ फटाफट, क्विक रिस्पॉन्स। एक ही क्वेश्चन, हाँ उसमें कवर कर लेंगे आराम से, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
ओम शांति सर। जब साहब जब होटल में बैठे थे, कॉकरोच ने जो चार लेडीज के ऊपर हुआ था, जब सर्वर ने आके उसने ये किया, जब सर्वर के ऊपर कॉकरोच छोड़ के कहीं सांप होता सर, रेस्पॉन्ड कैसे होते, स्नेक सांप होता तो रेस्पॉन्ड कैसे होता?
फिर रिस्पॉन्स तो वही होना चाहिए, क्योंकि अभी अभी का बताता हूँ, ये कहाँ बाढ़ आई थी, तो बाढ़ में कई स्नेक्स घूम रहे थे। मैं हमारे यहाँ का ही बताता हूँ, जो पांडव भवन है हमारा, हमारे जो फाउंडर लीडर ब्रह्मा बाबा थे, जब आए थे 1949-50 में, तो उस समय थिक जंगल था, बहुत जंगल था, और ब्रह्मा बाबा और दादियां उस समय सब यंग थी, वहां रह रही थी, बहुत सांप थे, स्नेक्स थे, अंदर भी आते थे, घूमते थे अंदर। फाउंडर लीडर ब्रह्मा बाबा ने कभी भी रिएक्ट नहीं कहा, न दादियों ने रिएक्ट किया, न किसी को काटा उन्होंने, आज तक की कोई हिस्ट्री नहीं थी, और बोलते थे बच्चे को छोड़ाओ बाहर। तो रिस्पॉन्स वाइब्रेशन, हमारे वाइब्रेशन काम करते हैं। मैं उस टॉपिक पे नहीं आया, बहुत डीप टॉपिक है, वाइब्रेशन ही अल्टीमेट है। और मेरे देखो, आप गली में जाते हो, कुत्ता किसी को भोंकता है, किसी को नहीं भोंकता है, शांत होता, क्योंकि वाइब्रेशन कैच करता है कि ये डिफेंस कर रहा है कि अटैक कर रहा है। चिपकली हो, कोई भी हो, वो सब जानते हैं कि ये अटैक कर रहा है कि डिफेंस कर रहा है। तो ये एक बार हमारे वाइब्रेशन प्योर हो जाते हैं, तो वो भी जानवर भी कैच करता है। देखो कई लोग कितने जहरीले सांप शेर को पालते हैं, वहां हम देखते हैं रोज, तो वो कैसे पाल लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक तो डर नहीं है और उनके वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन।